हमारे दूसरे स्पीकर हैं कांग्रेस पार्टी की अनामिका जी, अनामिका यादव जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, और ये को कोऑर्डिनेटर हैं एमएलसी कनेक्ट सेंटर की उत्तर प्रदेश में, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की, और वर्तमान पद है उनका राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का, और कई राज्यों में पर्यवेक्षक रह चुकी हैं, जैसे कि एमपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और बिहार में, और भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा थी, तो आप शायद उसका भी जवाब दे पाएंगी जो कि वाजपेयी जी ने बात उठाई है बीच में, कि ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है इसके ऊपर, क्या ऐसा है अनामिका जी?
सम्मानित वक्तागण, मॉडरेटर महोदय एवं इस वेबिनार को सुन रहे सभी श्रोताजनों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं भारत में चुनाव सुधारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु एडीआर के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। जो संस्था काम कर रही है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एडीआर, मैं आपका आभार मैं व्यक्त करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। साथियों, राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मामला है, इस पर बात होनी चाहिए, इसको खत्म करने के प्रयास भी होने चाहिए, लेकिन बात आती है नियत की, कि नियत साफ होनी चाहिए। 130th अमेंडमेंट कतई इस दिशा में एक सार्थक प्रयास नहीं है। इस अमेंडमेंट के मूल में भारत में विपक्ष को खत्म कर लोकतंत्र को कमजोर करने की नियत है। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए इस अमेंडमेंट को जब मैंने देखा तो राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनें मुझे याद आईं, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये लोग राजनीति से अपराधियों को दूर नहीं करना चाहते, ये सबसे ज्यादा जिनके पर मुकदमे होते हैं उनको टिकट देते हैं। इतना ही नहीं, मैं इसका एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में दुद्दी विधानसभा से राम दुलार गोंड जी का, जिनके ऊपर एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप था, उनको इन्होंने 2014 में वो आरोप था, 2022 में इन्होंने उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, और उसके बाद जब उनका आरोप कोर्ट से सिद्ध हुआ तो मजबूरन इनको पदमुक्त करना पड़ा। ये नैतिकता की बात करते हैं, इनकी नैतिकता ऐसे समझिए कि पिछले 11 सालों में जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग है वो सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको अनावश्यक जेल में बंद किया जा रहा है। ये इनकी कुत्सित जो मानसिकता है उसका प्रमाण यह है कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी जी को नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले 10 सालों से ये लोग परेशान कर रहे हैं। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं था कि ये कोई चार्जशीट दाखिल कर पाए, फिर कोर्ट ने जब बोला तब इन्होंने कोर्ट के प्रेशर में इन्होंने चार्जशीट दाखिल किया, और उसका जो रिजल्ट आया वो सबके सामने, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनली कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। ये लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, और तमाशा यह है कि जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा था तो अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी, इन लोगों पर ईडी की रेड ये लोग पढ़वा रहे थे। और सुचिता की बात करते हैं, इनकी बदनीयती को ऐसे भी समझिए कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने के लिए करते हैं। जो डर के इनके साथ आ गया उसके ऊपर लगे सारे आरोप हटा लिए गए। उसका मैं ज्वलंत दो उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। पहला उदाहरण मैं अजीत पवार जी का मैं दूंगी। चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपनी हर सभाओं में कहते थे कि अजीत पवार जी 40,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, उनको जेल होनी चाहिए। और जैसे ही अजीत पवार जी एनडीए का दामन थामते हैं, गठबंधन का पार्ट होते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, सारे उनके आरोप खत्म हो जाते हैं। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगी आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी का, जिनके खिलाफ पूरी भाजपा एक मुहिम छेड़ी हुई थी कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो मुख्यमंत्री जैसा पद, मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद उनको दिया जाता है। सच तो यह है कि 130th अमेंडमेंट बिल ना सिर्फ संविधान और न्याय की मूल भावना के खिलाफ है, साथ ही साथ यह संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला संशोधन है। मैं दोनों बातों को अलग अलग स्पष्ट करूंगी ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं अपनी दोनों बातों को अलग अलग तरीके से मैं बताना चाहूंगी। न्याय और संविधान की मूल भावना है जब तक जुर्म सिद्ध ना हो तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। प्राकृतिक न्याय का यही नियम दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के अपने एक मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फैसला देते हुए कहा कि राजनीति का अपराधीकरण गलत है, मगर सजा से पहले किसी को डिस्क्वालिफाई करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा, द कोर्ट रिमाइंडेड पार्लियामेंट दैट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज नॉन निगोशिएबल। 130th अमेंडमेंट इसी सिद्धांत को खत्म कर रहा है। अब संघीय ढांचे को कमजोर करने की बात करते हैं। इस बिल में ये कहा गया है
अनामिका जी, कि किसी भी मंत्री, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, है ना, एक मिनट ले लीजिए।
सर मैं बस एक मिनट अपनी, मैं बस कंक्लूजन की तरफ हूँ, लास्ट है कि ठीक है, इस टॉपिक पे आप लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं लास्ट बस कंक्लूजन ही है। अब संघीय ढांचे की जो बात है कि इस बिल में ये कहा गया है कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर अगर कोई भी ऐसी धारा या मुकदमा दर्ज है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और 30 दिन से ज्यादा की जेल होती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। मोदी सरकार का जो पिछले 11 सालों का जो रिकॉर्ड है सर, आप देख सकते हैं कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि विपक्ष की जिस सरकार को ये अस्थिर करना चाहते हैं उससे, उसमें किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को ये फर्जी मुकदमों में फंसा कर 30 दिन से ऊपर जेल कर अपने नापाक मंसूबों को पूरा कर लेंगे। मेरा मानना है संशोधन पूरी तरीके से असंवैधानिक और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। यह संशोधन संघीय ढांचे को कमजोर कर खत्म करने की साजिश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।
धन्यवाद। एक बात तो साफ है कि दोनों पार्टियों ने ये कहा कि भाई अपराधीकरण नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए जरूर, तो कम से कम एक स्वीकृति। हालांकि इसको अस्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम है, कौन कह सकता है कि भाई नहीं अपराधीकरण अच्छा है, तो फिर भी बोथ पार्टीज हैव एग्रीड। नाउ वी हैव अनदर स्पीकर फ्रॉम CPIM, डॉक्टर फुआद हलीम। नाउ डॉक्टर हलीम, एज वी हैव सीन बोथ कांग्रेस एंड द बीजेपी हैव सेड that this is, you know, the criminalization of politics is not the right thing and it should be combated. But the question that ADR is trying to discuss today is that, is the 130th Constitutional Amendment Bill the right path towards decriminalization? And we want to understand your point of view. And let me introduce Dr. Fuad Haleem. He's a senior leader of the Communist Party of India, Marxist. And he's a medical doctor practicing since 1996. And he's a grassroots worker and a local leader of CPIM. He's been running an NGO that provides free dialysis and dialysis at subsidized rates to the disadvantaged sections of people. And he won the NASSCOM Award for Social Innovation in 2009. He has also contested assembly elections, though unsuccessfully. Dr. Fuad Haleem.
Thank you, and my gratitude to ADR for inviting me to present my party's views on this issue. I will speak in Hindi. I earlier had a presentation, but I will not go through that since you will have covered most of the issues that I had on my presentation, and I will get into the thick of the conversation that has already come. देखिए, पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि गणतंत्र का मूल्य उसका अभ्यास और प्रयोग में ही चरित्रित्व होता है। तो अगर आप गणतंत्र को एक महज एक काल्पनिक या दार्शनिक रूप में अगर समझना चाहे तो वो जमीनी स्तर पर वो मिलता नहीं है। जो प्रयोग किया जाता वही गणतंत्र है। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि हमारे शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे उनके खिलाफ नर्मदा में बड़ा एक आरोप था, और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो बन गए भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में, वो जो ईडी का जो कार्रवाई था उसे स्थगित कर दी गई और फिर उन्हें क्लीन चिट के एक जगह पहुंचा देने की कोशिश की गई। अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता जोड़ा तो हमने देखा जो तमाम जो घोटाले के आरोप उनके नाम भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी वो वॉशिंग मशीन के तरह धुल के एकदम साफ हो गए। उदाहरण के रूप में आसाम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, उसके खिलाफ कई एक आरोप प्रधानमंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री मीटिंग में जब बात कर रहे थे छपे आकार में उनके जो वक्तव्य है उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को एकदम एक घोटालेबाज के रूप में नामकरण लिखित रूप में किया और वही प्रधानमंत्री आज उन्हें अपने मुख्यमंत्री बना दिए। तो प्रयोग समझना पड़ेगा, और ईडी सीबीआई को अगर इस तरीके से हम लोग हथियार दे देते हैं जिसको कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो फिर ये जो बिल है ये बिल लेकिन हिंदुस्तान में जो गणतंत्र है वो गणतंत्र आबोहवा और परिवेश को दूषित करने के लिए काफी कामगर होगा। हम जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के जो 9 कैबिनेट मंत्री थे उनके खिलाफ ईडी का आरोप था, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ा वो धुल के साफ हो गए। तो इस परिवेश में हमें इस संदर्भ में हमें ये जो अमेंडमेंट है इस अमेंडमेंट को हमें देखना पड़ेगा। पहली तो बात कि अपराधीकरण जो बड़ी है सारी हिंदुस्तान में विशेष करके जो तथ्य वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अपराधीकरण को अपनाने के लिए हिंदुस्तान में वो परिस्थिति और परिवेश तैयार की गई है। हमें समझना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनका संख्या नहीं है लोकसभा में, क्योंकि उनका संख्या नहीं है राज्यसभा में, इसीलिए वो ये बिल को पास नहीं किए। इसमें कोई आपको ये रखने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर संख्या रहती 362 अगर उनके एमपी अगर फुल हाउस ऑफ लोकसभा में रहती तो बिल पास होते। मौजूदा सूरत हाल में उनका सिर्फ 293 एमपी है। तो ये जो जेपीसी के पास भेजा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद खुशी के साथ नहीं भेजी है, ये आंकड़े नहीं है बोल के भेजे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक फैसीवादी दृष्टिकोण से ये कानून को उन्होंने रचा है, वही फैसीवादी शक्ति अगर उनका रहता लोकसभा राज्यसभा में, तो ये आज कानून के रूप में पारित हो चुकी होती। दूसरी बात कि आप इससे अपराधियों को लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, उन्होंने इस तरीके से गणतंत्र को प्रयोग किया है और इस्तेमाल किया है, ये उसके विपरीत है। ये हमेशा हमें ये उदाहरण हमने पहले भी दे चुकी, ये आपको मिलेगा। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो उनका है, इसके इसके बारे में समझना पड़ेगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल का जो केस है, वो केस के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। आपको समझना पड़ेगा कि ईडी ने लास्ट ये ममता बनर्जी के जो तमाम जो दुर्नीति, हम भी उनके दुर्नीति के खिलाफ है, हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन ईडी ने लास्ट कार्रवाई की जनवरी या फरवरी 2024, और 2024 से वो लोग काफी कार्रवाई कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया। और मुख्य केंद्र जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी सरकार जो है, अमित शाह है, उन्होंने पिछले 2025 फरवरी के बाद ईडी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। और जब हम चुनाव के सामने खड़े हैं बंगाल में, हम देखते हैं कि जनवरी में एक कोलाहल बन रही है, एक माहौल बन रहा है, ईडी आ रहा है, राज्य के पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, वो लोग दर्ज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रही है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल क्रिएट करने के लिए कितना तक वो लोग सजा देना चाहते हैं अपराधियों को, कितना वो लोग माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा। यहीं पर गणतंत्र मजबूत हो रही है, गणतंत्र का प्रयोग का जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, उसकी और स्पष्टीकरण हो रही है कि नहीं। यहाँ पर हमारा मूल्य चार बिंदुओं पर इस ये जो बिल है, ये बिल के खिलाफ हमारा है। नंबर वन, ये हमारे जो गणतंत्र है हिंदुस्तान में, वो एक चौथाई गणतंत्र, हम कहते हैं इट इज वन फोर्थ डेमोक्रेसी। वन फोर्थ डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी वन फोर्थ डेमोक्रेसी भी डाइल्यूटेड है, क्योंकि हम सिर्फ लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में हम जुडिशरी को इलेक्ट नहीं करते, हम एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट नहीं करते, हम अपने जो मीडिया है उसको इलेक्ट नहीं करते। अगर गणतंत्र का चार स्तंभ आप माने, तो उसमें से तीन स्तंभों का लोगों का कोई डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है जिसमें वो लोग तैयार हो। तो एक एक मुल्क का जो तीन पिलर्स है, उसमें आम आवाम का कोई भी मत वहां पर जाहिर नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, एसएचओ, डीएसपी हो, या आपके एसपी हो, डीआईजी को इलेक्ट नहीं करते, आपके जजेस को इलेक्ट नहीं करते, और आपके मीडिया पर्सन को नहीं इलेक्ट करते। दूसरी ले जाती है आपकी हमारे यहाँ पर जो एक कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर भी आप देखिए इस तरीके से है कि लेजिस्लेचर को आप दो स्तर पे पकड़े, बाइकैमरल स्ट्रक्चर पे, तो अपर हाउस चुने नहीं जाती है, और हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने जाते, वो सेकेंड लेवल ऑफ इलेक्शन में जो असेंबली या लोकसभा में होता है उसके द्वारा वो लोग चुने जाते हैं। तो एक एक बड़ी बड़ी डाइल्यूटेड सी 25% डेमोक्रेसी हमारा हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है। और उस डाइल्यूटेड डेमोक्रेसी के परिस्थिति में अगर वो भी हक ले लिया जाए कि लोग किसी को चुनेंगे और लोग किसको हटाएंगे जिसको वो लोग पावर में लाए हैं, तो ये मूल तौर पर सारा मुल्क में जो डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, उसको कमजोर कर देगी। ये हमारा पहले बिंदु है। दूसरी बात है कि हम जो चार पिलर्स बनाए हैं हमारे संविधान के द्वारा, देश की जो रूप है उसको सामने लाने के, स्टेट जिसको कहते हैं, फोर पिलर्स ऑफ आवर कंट्री, मूलतः तीन पिलर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और फोर्थ पिलर मीडिया, वो अलग है। तो इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री या एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा है, जो चुने हुए जो हमारे लोग हैं, उनको अगर एग्जीक्यूटिव के ऊपर हम पावर देते, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी आप अगर देखें तो उसमें साफ कही गई है किस तरीके से हम अपने मंत्री को नियोग करेंगे और किस तरीके से हम मंत्री को उसका पद से हटाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में मंत्री को हटाने, मुख्यमंत्री को हटाने, प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री को हटाने का जो विवरण है, वो विवरण संविधान में नहीं है। इसी बीच हमारे इस पदों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाने का भी प्रावधान मौजूद है। नए से आप एक प्रावधान को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव को एम्पावर कर रही है। हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है कि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, हमारा संविधान है, उसको मूल्यतः पार्लियामेंट्री प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां से बाहर सिर्फ नहीं ले जा रहा, जुडिशियल ओवरसाइट से भी बाहर ले जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ आरोप के बुनियाद में हटा रहे, आप जजमेंट या प्रोवेन जो अपराध है उसके ऊपर आप बुनियाद करके नहीं हटा रहे, तो आप जुडिशियल ओवरसाइट भी हटा रहे, आप प्योरली एग्जीक्यूटिव राइट बना रहे हैं यहाँ पर। ये हम लोग समझते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से ये डेंजरस है। दूसरा है कि आप जो ड्यू प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो होना चाहिए जो संविधान में है, उस ड्यू प्रोसेस को आप बाईपास कर रहे हैं, और इसके बारे में हम लोगों को स्पष्ट समझना पड़ेगा। और चौथी जो बात है, जो मूल्यता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में या जो भी पार्टी पावर में रहे, उसको आप लेकिन मिसयूज का आप स्कोप दे रहे हैं। मिसयूज इसलिए क्योंकि 2014 से 2022 तक तमाम जो ईडी के केस हैं, इसको आप अगर मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे 95% केस जो पॉलिटिकल केस है वो ऑपोजिशन के खिलाफ हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो उनके खुद के जो दल के अपराधी है उनके खिलाफ, लेकिन ईडी के तरफ से बुनियादी स्तर पर कोई भी केस जो आंकड़े में स्पष्ट तरीके से उभर कर आए वो सामने नहीं आ रही है। इसीलिए गणतंत्र का सिर्फ एक दार्शनिक रूप चर्चा करके फायदा नहीं, उसका जो बुनियादी स्तर में जो रूप सामने उसकी प्रकटीकरण हो रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रयोग करने के संदर्भ में, वहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो व्यूज है ये
प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। प्लीज कंक्लूड,
मेरी चौथी बिंदु की बात थी, मैंने चौथी बिंदु की बात करके हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे मुल्क में जो हमें गणतंत्र को अगर मजबूत करना है तो गणतंत्र को मजबूत करने के लिए द राइट टू रिकॉल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल टू पार्लियामेंट और डिफरेंट इलेक्टेड बॉडीज, गणतंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जो डाइल्यूटेड 25% जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने से लोग जो लोग अपराधी है उनसे अपना जो समर्थन है वो लोग वापस लेंगे, और जो काम करने वाले हैं उनको सामने ले आएंगे। हमारा फर्स्ट बाय द पोस्ट जो सिस्टम है वो सिस्टम को हम लोग को रीथिंक करना पड़ेगा, और ये बिल का हम लोग मुखालफत करेंगे, इसके खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने वर्चस्व और अपना क्षमता को कायम रखने के लिए वो लोग इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।
थैंक यू डॉक्टर फुआद अली। ये बात जरूर कहनी जानी चाहिए, एडीआर बहुत समय से कह रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज दोषी हैं इसमें, कहीं ना कहीं ऑल आर कल्प्रिट्स इन सम वे और दी अदर। दे स्पीक वन लैंग्वेज व्हेन दे आर इन द ऑपोजिशन, दे स्पीक अनदर लैंग्वेज व्हेन दे आर यू नो दे आर इन पावर। सो वी हैव द लास्ट स्पीकर टुडे, Mr. T.S. Krishnamurthy, and we intentionally kept him as a last speaker because he is not a political person, and we understand that he has also been very exercised while he was the Chief Election Commissioner of India about criminalization of politics, and he wrote many letters to different authorities at that time regarding, you know, what can be done, etc. So, Mr. Krishnamurthy by way of introduction, is not only the former Chief Election Commissioner of India, he also served in various different capacities in Government of India. He served as the Secretary, Department of Company Affairs. He was the first IRS, Indian Revenue Service Officer, to become a Secretary to the Government of India, as well as the Chief Election Commissioner of India. He served as the 13th Chief Election Commissioner from February 2004 to May 2005. Mr. Krishnamurthy, you've heard the political parties, and all of them have some point or the other, but I want to know from you, how do you see this entire issue of decriminalization of politics? Do you think it is possible in India, and do you also think that the Constitutional Amendment Bill, 130th Bill, is the right path, which is the focus of today's discussion? Mr. Krishnamurthy. Sir, your mic is muted.
Very good evening to all of you. Many thanks for inviting me to participate in this very important and serious subject. The bill has been brought before the Parliament, a constitutional amendment bill. But I have some different perspective on this. The very purpose of this bill is certainly laudable in the sense that as far as possible, keep the criminal elements away from the public administration. When a government servant is suspected to have violated the rules of administration, the government takes a step, suspends the person, launches an inquiry, and takes a decision whether he should continue or whether he should be punished in a different way or to be dismissed from the service. But here, a different kind of step has been adopted. I welcome any step to prevent criminals from ruling the frame. It's very unfortunate that this bill has come only as a piecemeal, remedy, whereas the country is crying, the democracy in this country is crying for larger electoral reforms. Well, while I certainly endorse the view that a public servant cannot continue if once he is arrested and put in the jail without a bail. For example, in Tamil Nadu itself, there was a minister for more than nearly 1 year. He was in the jail. He was continuing to be a minister, enjoying the perquisites of office, and still without any work. So there is some kind of a need for a reform. But I do appreciate the apprehensions of the political parties, namely whether it will be vindictively operated. So we have to provide some safeguards. The amendment can consider. See, there is an ethics committee in the parliament, which is supposed to supervise, similarly in the probably in the state legislatures as well, to ensure proper ethical conduct of ministers as well as the legislators. In fact, in my opinion, this should have been taken up as a measure through the ethics committee to ensure such persons should continue in office or not. But it, for example, in the case of, you remember, in the case of Indira Gandhi's disqualification and the electoral offense, the Supreme Court suspended the right of the Prime Minister to participate in the vote in all matters relating to legislative business. So there is some urgent need to bring about a comprehensive amendment to ensure the criminal elements do not sway our legislative business. I do appreciate that the other wings of democracy cannot overreach in their functions toward the parliamentary privileges. Some of the suggestions made by Dr. Fawad Haleem, like recall, proposed representation, are certainly laudable and they should be considered. Not because that they will be, bringing about a total change, but I think there is a need for an urgent realization that we have to cleanse our political life. So as far as this particular bill is concerned, if you can provide some safeguards to ensure that the apprehensions of the opposition parties are addressed, maybe ethics committee consideration and then the legislative assembly to decide on the issue, or a clearance board before a person is asked to resign, is certainly probably will remove some of the apprehensions. But there is no doubt, at least in my opinion, public servant, a minister, to decide public issues of importance when particularly has been in the jail for more than a particular period. So there has to be a resolution by a competent body of the parliament or the state legislature. I think they could consider that. In addition, I would like to say, you are only addressing a part of the problem. There are so many people contesting elections with so many cases of heinous crimes. and they are allowed to continue as even legislators. Why not bring a comprehensive bill to attack the criminals in alleged criminals in politics and prevent them even from contesting? Because if a government servant can be suspended from his normal duties when there is an accusation, it is not a fundamental right to contest the elections or to continue as a minister. It is not a fundamental right. It's a constitutional right, yes. But you must consider a comprehensive bill to cover all cases before contesting, after contesting, and then thereafter, whether they should be continued to be in public life. And a comprehensive bill is probably the right answer. But at the same time, I would like the parliamentarians and the political party to address this issue seriously without any political hangover. It is urgently required because as I see the political trends in this country, I think the situation may become worse in the years to come. Whatever be the party in power, they have a duty, they have a moral responsibility to ensure cleaner public life. And the better it is that they evolve a consensus rather than some kind of a confrontational politics in this. So I would, as a retired chief election commissioner, having dealt with all political parties, I've had no problem when I was the election commission. I would advise some kind of a caution. I would bring all the political parties to come together, look at the future of this country, the future of democracy in this country, and bring about some effective resolution. In fact, as you mentioned at the introduction stage, I had sent 24 recommendations to the then Prime Minister of India in 2004. Unfortunately, whatever reform has come, it has come only through the Supreme Court and not through the legislature or the parliament. But I would appeal to all the political parties to sit together, address this issue, not only this criminalization of politics, but also violence, hatred, and so on, and bring about a comprehensive reform bill to ensure cleaner public life in this country. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you for keeping the time limit also. We have some time left for questions and answers. And let me also say here, as you mentioned, that all political parties have to come together and Supreme Court has a role in this. We actually filed a case. It was Public Interest Foundation and others. So Common Cause was a co-petitioner in this, in which we said that you lay down appropriate guidelines, you know, to ensure that the legislators or any candidates who have serious criminal charges against them, they should not be able to enter the political arena or to contest elections, etc. So this was in 2013. This was referred to the Law Commission. And the Law Commission, I think it was 244th report of the Law Commission in 2014, which gave some very good kind of recommendations on this, which are, in the public domain. And the court also took kind of notice of some of them, mentioned them in some judgments. But I think it has not progressed further from there. You know, it also said that charges should be expeditiously kind of dealt with. They should be day-to-day hearing. And in fact, in the same case, I think later on the Supreme Court said that all cases, serious criminal cases against MLAs and MPs should be concluded within 1 year, you know. So that was also as per the recommendations of the Law Commission. So we have been saying, I mean, ADR has a consistent position on this and on all other bills. We are against kind of bulldozing, you know, bills through parliament where you do not have any discussion. Fortunately, this is with the JPC. We hope that JPC will invite suggestions and, comments from the public and from the stakeholders, and there will be pre-legislative kind of transparency in it. We would know that how many of those suggestions have been taken into account or not. But there is no doubt that there should be ample deliberation, ample kind of contestation and discussion, constructive discussion and constructive contestation on the subject, because it needs to be tackled. सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. एडीआर की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। नमस्कार, हम लोग ठीक टाइम पे इसका समापन कर